विश्व जनसंख्या दिवस के मद्देनजर क्या नए आंकड़े सामने आए हैं, खासतौर से भारत के संदर्भ में क्या नए आंकड़े हैं?
अगर आंकड़ों की बात की जाए तो भारत में जनसंख्या को लेकर काफी अच्छे आंकड़े हैं। जैसे जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो कम हुई है। 2001 सेंसस के कंपैरिजन में 2001 एंड 2011 सेंसस में लगभग 4% अंक की कमी आई है। इसका मतलब सीधे अगर सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में अगर हम कहें तो जनसंख्या बढ़ तो रही है लेकिन उसकी बढ़ने की जो दर है वो बहुत धीमी हो गई है पहले के मुकाबले में। दूसरा अगर देखा जाए तो जो हम बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट, जो एक आंकड़ा होता है कि एक औरत अपने लाइफ टाइम में कितने बच्चों को जन्म देती है, उसमें 1994 में 3.6 का आंकड़ा था, वो घट के अब 2.2 पे आ गया है। और इसको 2.2 को उस संदर्भ में देखने की जरूरत है जिसमें कि 2.1 जो होता है वो एक आदर्श TFR माना जाता है और उसको हम बोलते हैं कि रिप्लेसमेंट लेवल, कि जितने लोग हैं उतने ही रहें, उनको वो उनकी बदली हो जाए तो वो है। तो इसका मतलब ये कहने की है कि भारत का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो लगभग जो है 2.1 के आसपास पहुंचने वाला है, विच इज अगेन मतलब एक अच्छी चीज है।
तो कहा जा रहा है कि 2027 तक भारत चीन को पीछे छोड़ देगा जनसंख्या के मामले में, इसके क्या मायने होंगे और इसे किस तरह देखा जाना चाहिए?
ये सही बात है। UN के जो लेटेस्ट प्रोजेक्शंस आए हैं उसमें ये प्रोजेक्ट किया गया है कि 2027 में भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से ज्यादा हो जाएगी। इसका एक और पहलू है अगर पीछे से हम देखना चाहें, यही UN के जो प्रोजेक्शंस थे, पहले इन्होंने बताया था कि 2021 में भारत चीन को पार कर जाएगा। ये हर साल प्रोजेक्शन जो है रिवाइज होते हैं, फिर ये आया कि 2024 में, फिर 2026 में, अब कह रहे हैं कि 2027 में भारत चीन की जनसंख्या को पार कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये हमेशा जो है रिवाइज करना पड़ रहा है प्रोजेक्शंस, और उसका एक मेन कारण ये है कि हमारी जो टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसका मैं कह रहा था कि घट के 2.2 आ गई है, जितनी हम लोगों ने अंदाजा लगाया था उससे तेजी से कम हो रही है। इसीलिए प्रोजेक्ट हम पार तो कर जाएंगे लेकिन जितना पहले पार करना चाहिए था उसके मुकाबले अब हम बाद में पार करेंगे। अब ये है कि क्या सिर्फ हम पूरी जनसंख्या को देखें या जनसंख्या की जो बनावट है उस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि हम लोगों को जनसंख्या की जो बनावट है, और बनावट से मेरा मतलब ये है कि उसमें कितने बच्चे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो काम करने वाली जो आयु वर्ग है उसमें है, और कितने बूढ़े हैं, तो अभी भारत उस स्थिति में है कि हमारे पास बच्चों की संख्या कम हो रही है, बूढ़ों की संख्या बढ़ रही है लेकिन उतनी तेजी से अभी नहीं बढ़ रही है, और उसके चलते हमारे पास जो एक बहुत बड़ा वर्ग, लगभग 65% लोग ऐसे हैं जो 15 से 59, जिनको हम कहते हैं कि काम करने वाली आयु वर्ग में है, ये एक बहुत बड़ी जो है एक पॉपुलेशन, जनसंख्या का एक वर्ग हमारे पास है। उसको हम किस तरह से देश की बढ़ोतरी के लिए, उन लोगों के जीवन के खुद की बढ़ोतरी के लिए, समाज की बढ़ोतरी के लिए कैसे हम लोग जो है उनको सही दिशा दे सकते हैं, सही इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे हिसाब से ज्यादा ध्यान उधर होना चाहिए।
इस साल ICPD के भी 25 साल हो रहे हैं पूरे। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ICPD को 2019 का थीम बनाया है, इसका क्या मतलब है?
ICPD का अगर फुल फॉर्म में इसको हम समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। एक बहुत ही बड़ी गैदरिंग हुई थी, सम्मेलन हुआ था कायरो में, वो हुआ था 1994 में। उससे पहले भी पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंसेज होती थी लेकिन उसमें ज्यादा ध्यान होता था पॉपुलेशन पे, वहां पे डेमोग्राफर्स आते थे, एक्सपर्ट्स आते थे और वो पॉपुलेशन के ट्रेंड्स वगैरह को देखते थे। 1994 की एक जो है पाथ ब्रेकिंग, जो लीक से हटके जो है कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें पहली बार पॉपुलेशन के साथ जोड़ा गया डेवलपमेंट, और ये हुआ कि पॉपुलेशन और डेवलपमेंट का एक गहरा रिश्ता है, एक दूसरे को प्रभावित करता है और एक को दूसरे के बिना नहीं समझा जा सकता। इंडिविजुअल लिबर्टी, औरतों के अधिकार, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो अधिकार, उसकी सर्विसेज, बहुत चीजों पे सारे देशों ने मिलके, मैं बता दूं 179 देशों के का प्रतिनिधित्व था वहां पे और लगभग 10,000 डेलीगेट्स थे, सब ने मिलके जो है एक तैयार किया, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन। उसी प्रोग्राम ऑफ एक्शन पे सारे देशों ने हस्ताक्षर किए और उसके हिसाब से अपनी पॉपुलेशन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स उनको वो किया गया। ये साल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब 25 साल उसके हो रहे हैं और उसको देखने के लिए कि अब हमारी कितनी प्रोग्रेस हुई है 1994 लेके आज तक और आगे हमें क्या करना होगा, जो कि हमारा जो अभी तक जो निर्धारित किए थे कि हम ये लक्ष्य पाएंगे वो नहीं पा पाए हैं, उसके लिए फिर से सारे देश और सारे डेलीगेट और जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैं, एक्टिविस्ट हैं, सरकारें हैं, वो जो हैं नैरोबी में इकट्ठा होंगी इस साल नवंबर में। तो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने उसी थीम को उसी एक मूवमेंट के तौर पे कि सारा देश इस बारे में बात करे और जब हम नैरोबी में जाएं तो एक सोच लेके जाएं कैसे हम लोग इन चीजों को वहां पे रख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं।
जैसा कि आपने बताया कि आंकड़ों के मुताबिक भारत में बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ रही है, साथ ही जो युवा हैं उनकी भी संख्या बढ़ रही है, लेकिन फिर भी कुछ बुनियादी ढांचे में कुछ कमियां हैं जिनकी वजह से हम उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है?
जैसे मैंने कहा कि वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है, कामकाजी जो आयु वर्ग है, उसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। बच्चे अभी जो है, जैसे हम एजुकेशन में देखें, एनरोलमेंट बढ़ा है, ज्यादा सालों तक जो स्कूल्स में बच्चे और युवा रह रहे हैं। हम इस बड़े आयु वर्ग का देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में कैसे जो है पॉजिटिव वे में उसका वो कर सकते हैं, इसके लिए हमारा ध्यान होना चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत तो ये है कि सबको हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, सबको जो है हेल्थ सुविधाएं मिलनी चाहिए, खासकर जो युवा एडोलेसेंट और यंग पीपल हैं, बच्चे हैं, उनके लिए सिर्फ हेल्थ तक न रह के उनकी जो समस्याएं हैं, जैसे मेंटल हेल्थ इंडिया में एक बड़ा इशू उभर के आ रहा है, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उनकी जो जरूरतें हैं उनकी पूरी होनी चाहिए और इस तरह से पूरी होनी चाहिए नॉन जजमेंटल वे में, उनको वो सुरक्षा सुविधाएं मिलनी चाहिए, सर्विसेज मिलनी चाहिए। दूसरा, साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान होना चाहिए, एजुकेशन पे ध्यान हो उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पे, और उनको लिंकेजेस क्रिएट किए जाएं जहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, तब हम लोग जो है इनको जो इतना बड़ा आयु वर्ग है उसका जो है बेहतर तरीके से देश के लिए, उनके समाज के लिए और उनके खुद की बढ़ोतरी के लिए कर सकेंगे।
तो विश्व जनसंख्या दिवस पर यूएनएफपीए का क्या संदेश है कुल मिलाकर पूरे विश्व के लिए भी और भारत के लिए भी?
महिलाओं को उनकी आजादी मिले, उनके जो पार्टिसिपेशन है, उनका शिक्षा में उनकी भागीदारी हो, उनकी जो है सामाजिक जो जीवन में उनकी भागीदारी हो, और उनका एम्पावरमेंट इस तरह से हो कि वो डिसाइड कर सकें उनको क्या करना है अपने जीवन में, उनको कितने बच्चे चाहिए, किस टाइम पे चाहिए, इस तरह का जो है, जब तक उनका एम्पावरमेंट नहीं होगा तो हम कहेंगे कि आईसीपीडी अभी तक पूरी तरह से रियलाइज नहीं हुआ है। जो हमारे पास एक ये जो बड़ा समूह है, जो यंग और वर्किंग एज पॉपुलेशन है, इसको स्वास्थ्य, एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के साथ लिंकेजेस वो होना चाहिए। इसके साथ साथ आपने जो जिक्र किया था पिछले सवाल में और मैं नहीं बोल पाया था, इंडिया में एजिंग, बूढ़ों की भी जनसंख्या अभी उतनी ज्यादा नहीं है लेकिन बढ़ने वाली है, तो उस पे भी अभी से हम लोगों को बातचीत शुरू कर देनी चाहिए और उसके लिए पॉलिसीज और प्रोग्राम्स अभी से बनाने की जरूरत है।
किस तरह के पॉलिसीज प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं बूढ़े लोगों के लिए?
बूढ़े लोगों के लिए दो तीन मैं आंकड़े अगर आपको दे दूं, एक तो ये है कि 70% बूढ़े जो है गांव में रहते हैं। दूसरा, क्योंकि ज्यादातर वो अपनी जवानी में या जब वो काम कर रहे थे इनफॉर्मल सेक्टर में उन्होंने काम किया होता है, तो इसका मतलब ये है कि उनके पास एक तो बहुत ज्यादा सेविंग नहीं होती है, दूसरा उनके पास पेंशन या सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स नहीं होते हैं, तो अब वो जो है या तो अपने बच्चों पर निर्भर करते हैं या फिर उनके जो एसेट्स होते हैं उन पर निर्भर करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि उनकी स्वास्थ्य की देखभाल की जाए, साथ साथ में उनकी जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है वो भी इंश्योर किया जाए, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जो है वो उनकी तैयार की जानी चाहिए, माइग्रेशन इंडिया में बहुत ज्यादा है। जो बच्चे माइग्रेट कर जाते हैं और जहां पे वृद्ध जो है वो पीछे छूट जाते हैं, उनके लिए क्या सोशल सपोर्ट सिस्टम है कि उनकी केयर कर सके, उनका स्वास्थ्य की सुविधाएं चाहिए, उनको ले जाए, देखभाल की जा सके, इसके लिए भी सिस्टम्स जो है वो होने चाहिए, पॉलिसीज प्रोग्राम्स। अभी से अगर हम सोचना शुरू करेंगे तो जैसे हम लोगों का है कि 2050 में लगभग हर चौथा आदमी वृद्ध होगा, 60 से 60 या 60 से ऊपर का होगा, तो हम तैयार होंगे उसके लिए।